का था, रूह वही रूप नया।
खूनी खेल के पिछले भाग में आपने सुना कि तारा और नंदू लकड़बग्घों का शिकार हो गए। शेख ने उन लोगों को जंगल के रास्ते पानी तक पहुंचने की चेतावनी दी थी, अगर वो तट तक पहुंच जाते हैं तो वो विनर्स होंगे, और अगर नहीं पहुंचते तो भूसा भर के उनकी लाश भी उन्हीं शीशों में सजा दी जाएगी जैसे बाकी इंसानों की लाशें सजी थी। क्या रिया, राज, अब्दुल, मथाई, नंदू और तारा इस रियलिटी खूनी खेल के शो से बचकर अपने अपने घर को पहुंच सके? जानने के लिए सुनिए खूनी खेल का ये भाग। इधर नंदू और तारा अपनी मौत से लड़ रहे थे, उधर अब्दुल ने अपने कपड़े निकालकर एक टहनी को पहना दिए और भरसक कोशिश की कि वो इंसान जैसी आकृति लगने लगे। इस इंसान नुमा पुतले को उन्होंने एक झाड़ी में इस तरह छुपाया कि वो थोड़ी कोशिश से दिख जाए। वैसे भी शिकारी कुत्ते उनके कपड़ों को सूंघ लेंगे, इसकी संभावना उन्हें थी। अब्दुल अब केवल बनियान पहने हुए था और उसे ठंड लगने लगी थी। रिया ने अपना दुपट्टा उसे दे दिया, जिसे अब्दुल ने कसकर अपने सिर पर बांध लिया और कान ढक लिए। मथाई अचानक जाकर बरसाती नदी के किनारे का कीचड़ अपने शरीर पर मलने लगा। राज ने पूछा, ये क्या कर रहा है मथाई? मथाई बोला, कीचड़ लगी रहने से कुत्ते आसानी से मयक नहीं पा सकेंगे, तो पहले वो पुतले की तरफ झपटेंगे। बाकी तीनों को भी ये आइडिया अच्छा लगा। उन्होंने भी जाकर अपने शरीर पर इतना कीचड़ पोत लिया कि सिर्फ आंखें दिखाई देने लगीं। थोड़ी देर बाद अचानक तीनों के कान खड़े हो गए। दूर से ढोल नगाड़ों की हल्की हल्की आवाज सुनाई पड़ने लगी थी। लगता है शिकारी चल पड़े हैं। इतना बोलते हुए रिया के बदन में एक सिहरन हुई। राज बोला, हमें ठंडे दिमाग से काम लेना होगा। अब्दुल और मथाई, तुम दोनों पेड़ों पर चढ़ जाओ, मैं और रिया नीचे रहेंगे और हम अपने शिकारियों के हथियार लूटने की कोशिश करेंगे। अगर शिकारी दल पुतले के जाल में फंस गया तो हम एक आध भटके हुए को दबोच सकते हैं। अब्दुल और मथाई ने सहमति में सिर हिलाया और पेड़ पर चढ़ने का उपक्रम करने लगे। अब्दुल तो अपने हल्के वजन के चलते बंदर की तरह ऊंचाई पर जाकर पत्तों में छिप गया, लेकिन मथाई अपेक्षाकृत भारी डीलडॉल का था। वो निचली शाख पर पहुंचने में ही हांफ गया और शाखा पर ही लेट गया। राज और रिया अपने सामने की झाड़ियों में जाकर छिप गए। इन्होंने अपने पास कुछ पत्थर चुनकर रख लिए थे जो समय पड़ने पर हथियार का काम कर सकते थे। धीरे धीरे ढोल नगाड़ों की आवाज तीव्रतर होती जा रही थी। इन सभी के हृदय बहुत जोर जोर से धड़कने लगे। थोड़ी देर बाद इन्हें खूंखार कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई पड़ी, जो शायद इनकी गंध पा चुके थे। लगभग 10-15 मिनट के बाद इन्हें एक हाथी पर सवार शिकारी दिखाई पड़ा। उनके आगे कुछ आदिवासी दौड़ रहे थे, जिनके हाथों में अनेक तरह के नुकीले हथियार थे। हाथी के हौदे में शेख बैठा हुआ था। उसके अपने हाथ में खतरनाक शॉटगन थी। उसके बगल में गिलबर्ट था, उसने भी अपने हाथ में एक दुनाली बंदूक ले रखी थी। नीचे एक घोड़े पर जिगारो बैठा हुआ था। उसने अपने हाथ में कोई हथियार नहीं ले रखा था, लेकिन उसके कपड़ों में हथियार था जो पलक झपकते शायद उसके हाथ में आ सकता था। मिखाइल और यामोशी अभी नहीं दिखाई दे रहे थे। आदिवासियों के साथ जंजीरों में बंधे खतरनाक कुत्ते उत्तेजनावश कूद रहे थे। उन्होंने अपने शिकारों की गंध सूंघ ली थी। गिलबर्ट और शेख अति सावधान हो गए थे। जिगारों ने भी एक पिस्तौल निकालकर अपने हाथ में ले ली। हाथी के हौदे पर एक शक्तिशाली सर्च लाइट लगी हुई थी। गिलबर्ट ने सर्च लाइट को हर दिशा में घुमाना शुरू किया। शिकारी कुत्ते झाड़ियों की तरफ लपक रहे थे। अचानक शेख ने झाड़ियों में नारंगी कपड़े पहने एक दुबके इंसान को देखा और उसकी तरफ कई फायर किए, जो जाकर झाड़ियों में छुपाए गए उस पुतले को लगे, जिसे प्रतियोगियों ने इसी मंशा से वहां छुपा रखा था। पेड़ पर बैठे मथाई और अब्दुल भी सावधान हो गए। पेड़ पर चढ़ते समय उन्होंने अनेक नुकीले पत्थर अपनी जेबों में भर लिए थे। अब्दुल ने पेड़ पर से ही शेख के चेहरे को निशाना बनाकर एक बड़ा सा पत्थर दे मारा, जो जाकर शेख की बाईं आंख पर लगा। शेख जोर से चीखा और उसकी हाथ में थमी हुई गन अकस्मात गरज उठी। गोली सीधे जाकर आदिवासियों के सरगना की गर्दन के पार हो गई, जो हाथी के महावत का भी काम कर रहा था, और वो निशब्द जमीन पर गिर पड़ा। आदिवासियों के झुंड में ये देखकर भगदड़ मच गई। उनके कुत्ते हाथ से छूट गए और वे उस पेड़ के नीचे जाकर जोर जोर से भौंकने लगे जिस पर मथाई और अब्दुल बैठे थे। जिगारों का घोड़ा इन घटनाओं से बिदक गया और तेजी से एक और को भाग निकला। जिगारो किसी तरह उस पर संतुलन बनाने का प्रयास करता हुआ दूर निकल गया। शेख की आंख फूटने से खून का फव्वारा फूट पड़ा था और रक्त में नहाने से उसका चेहरा बड़ा भयानक लगने लगा था। गिलबर्ट अपनी दुनाली से पेड़ पर हो रही हरकतों का निशाना लेने की कोशिश कर रहा था कि उसे भी एक जोरदार पत्थर आकर कनपटी पर लगा और वो भी चीख मार कर हौदे में ही लौट गया। चारों आदिवासी कुत्तों को छोड़कर अपने सरदार को ले भागे। उनकी पहली प्राथमिकता अब सरदार को बचाने की थी। शेख और गिलबर्ट घायल हो गए थे और हौदे में फंसे पड़े थे। अचानक मथाई पेड़ पर से हौदे में कूद पड़ा और उसने अपने चाकू से शेख पर कई वार कर दिए। गिलबर्ट की दुनाली की नाल लंबी होने की वजह से वो मथाई पर निशाना न लगा सका, लेकिन शेख ने घायल होने के बावजूद मथाई पर एक फायर कर दिया। गोली मथाई को जाकर लगी, लेकिन वो किसी मर्म स्थान पर नहीं लगी, तो वो संघर्ष करता रहा। अब्दुल अपेक्षाकृत ऊंचाई पर था, उसने भी हौदे में छलांग लगा दी, लेकिन उसका बैलेंस गड़बड़ा गया और वो धड़ाम से धरती पर गिर गया। उसके गिरते ही दोनों कुत्ते उस पर टूट पड़े। अब्दुल ने अपने हाथ के चाकू से कुत्तों पर दनादन वार किए, लेकिन तब तक कुत्तों ने उसे बुरी तरह काट खाया। उधर शेख बेहोश हो गया था। हौदे में तीन भीमकाय मनुष्य किसी तरह फंसे हुए थे। मथाई ने गिलबर्ट के गले पर जड़ तक अपना चाकू ठूंस दिया था। उसकी श्वास नली कट गई और वो बुरी तरह खांसने लगा। इसी क्रिया में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। मथाई ने शेख की शॉटगन लेकर कंधे पर टांग ली और हौदे पर खड़े होकर उसने चाहा कि कूद कर फिर पेड़ की मोटी डाल पर चढ़ जाए, लेकिन अपने भारी भरकम शरीर के कारण वो जमीन पर गिर गया। उधर दोनों कुत्ते और अब्दुल बुरी तरह घायल हो चुके थे। एक कुत्ते ने मथाई की तरफ झपट्टा मारा। मथाई के हाथ का चाकू गिरने की वजह से वो कहीं छिटक गया, लेकिन इसके पहले कि वो अपने शॉटगन कंधे से उतार कर उस पर फायर कर पाता, भयानक कुत्ते ने घायल होने के बावजूद उसे भंबोड़ कर रख दिया। उसे पहले ही एक गोली लग चुकी थी। उसके भारी बदन से रक्तस्राव होने लगा। इतने में जिगारो अपने घोड़े सहित लौट आया। उसने अपने हाथ में 6 गोलियों वाली रिवॉल्वर ले रखी थी। उसने हड़बड़ाकर सारा चेंबर इन लोगों की तरफ खाली कर दिया। अब्दुल, मथाई और दोनों कुत्ते मारे गए। मथाई की एक गोली भी जाकर जिगारो की टांग में लग गई थी। अब मैदान जंग में दो ही इंसान जिंदा थे, लंगड़ाता हुआ जिगारो और बुरी तरह घायल शेख। हाँ, दो और लोग थे जो अभी आउट ऑफ फ्रेम थे, राज और रिया। लेकिन वे दोनों कहाँ थे? उनके अलावा मिखाइल और यामोशी भी आने बाकी थे। थोड़ी देर बाद यामोशी और मिखाइल आ पहुंचे और वहां के हालात देखकर भौंचक्के रह गए। उन्होंने शेख को हौदे से उतार लिया और फर्स्ट एड देने की कोशिश करने लगे। शेख को थोड़ी देर बाद होश आ गया। वो बुरी तरह घायल होने के बावजूद गजब का जीवट वाला इंसान था। उसने हाका स्थगित करने से इनकार कर दिया। उन हरामजादों को तो ढूंढकर मारना ही है जिन्होंने इतना उत्पात मचा दिया है। ठीक है, मिखाइल बोला, तुम जाकर आराम करो, हम और यामोशी उन सब के पीछे जाएगा और उनको खत्म कर देगा। शेख बोला, नहीं बिरादर, हम अभी ठीक है, अम्बी साथ चलेगा। दोनों बोले, देखो शेख, तुम बुरी तरह घायल हो, ऐसी हालत में तुम हमारी मदद करने के बजाय परेशानी पैदा कर सकते हो, तुम प्लीज वापस जाओ, हम दोनों उनके पीछे जाएगा। ओके फ्रेंड्स, मैं वापस जाता हूँ, तुम दोनों जल्दी आकर खुशखबरी सुनाना। जिगारो ने अपने घोड़े पर शेख को बिठा लिया और खुद लगाम थाम कर घोड़ा लेकर पलट गया। मथाई की चलाई गोली उसकी टांग का मांस छीलती हुई निकल गई थी, लेकिन हड्डी को कोई नुकसान नहीं हुआ था। उसने एक रुमाल से अपने घाव को कसकर बांधकर काम चलाऊ उपचार कर लिया था। यमोशी और मिखाइल अपने हथियार थामे सतर्कता पूर्वक आगे चल पड़े। अब उनकी रहबरी को न जिगारो था, न आदिवासी और न ही उनके ट्रेंड कुत्ते। अगर उनके पास खतरनाक रॉटवाइलर कुत्ते जीवित अवस्था में होते तो वे निश्चित ही नदी के किनारे सघन झाड़ियों में छुपे राज और रिया को ढूंढ निकालते। राज और रिया वहां संपन्न हुए कत्लेआम के प्रत्यक्षदर्शी थे, लेकिन अगर वे उस संघर्ष में कूदते तो निश्चित मारे जाते। वे चुपचाप लड़ाई देखते रहे। जब शेख अपने महल की ओर मुड़ गया और यमोशी और मिखाइल आगे चले गए तो वे दोनों झाड़ियों से निकल कर आए। वहां अब्दुल और मथाई की लाशें कुत्तों की लाशों के साथ पड़ी हुई थी। बगल में शेख का हाथी बैठा हुआ था जिसके हौदे में गिलबर्ट की लाश पड़ी थी। राज ने जल्दी जल्दी गिलबर्ट की लाश की तलाशी ली। उसे गिलबर्ट के घुटनों तक ऊंचे जूतों के बगल में खुसा हुआ एक नायाब लंबा चाकू बरामद हुआ। राज ने वो चाकू लेकर रिया को दे दिया। वहीं बगल में उसे एक आदिवासी का धनुष पड़ा मिल गया और 3-4 तीर भी। राज ने उसे उठाकर कंधे पर लटका लिया। रिया ने अपना लंबा चाकू उसे देते हुए कहा, अब धनुष बाण मुझे दो। राज उस अवस्था में भी मुस्कुराकर बोला, जानती भी हो ये क्या है। रिया बोली, मैं आर्चरी की स्टेट चैंपियन रह चुकी हूं, लाओ दो। राज की आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं। उसने तुरंत धनुष रिया के हवाले कर दिया। आओ चलें, कहकर राज महल की दिशा की तरफ चल पड़ा। रिया चौंक कर बोली, राज तुम उल्टी तरफ जा रहे हो। राज बोला, नहीं रिया, मैं सही दिशा में जा रहा हूं। आगे यमोशी और मिखाइल को जाने दो, हम उल्टी तरफ जाकर शेख को खत्म करेंगे। अभी तक वो कमीना हमारे पीछे था, अब हम उसके पीछे जाएंगे। जब तक वो जिंदा रहेगा हम बच नहीं सकेंगे। रिया बोली, लेकिन उसमें तो हमारा बहुत समय चला जाएगा, फिर हम तट पर कैसे पहुंचेंगे। राज बोला, तुम क्या समझती हो, क्या ये सिर्फ खेल है? क्या तट पर पहुंच जाने पर ये भेड़िये हमें छोड़ देंगे? नहीं, अपनी जान बचाने का सिर्फ एक यही तरीका है कि इन्हें खत्म किया जाए, समझी? रिया ने सहमति में सिर हिला दिया। दोनों तेजी से यथासंभव बेआवाज जिगारो और शेख की तरफ दौड़ पड़े। लगभग आधे घंटे की तेज चाल के बाद वे ऐसी जगह पहुंच गए जहां सुस्त चाल से जिगारो चलता हुआ नजर आया। शेख घोड़े के अयाल पकड़कर उसकी गर्दन से चिपका हुआ था। वे चूंकि प्रतियोगियों से विपरीत दिशा में जा रहे थे तो बिल्कुल बेपरवाह थे। उन्हें पता नहीं था कि मौत तेजी से उनके पीछे दौड़ी आ रही है। रिया तेजी से लंबा चक्कर लगाकर उनके आगे पहुंचने की कोशिश करने लगी। उसने धनुष हाथों में तान रखा था और उस पर बाण चढ़ा हुआ था। जैसे ही रिया सही पोजीशन में पहुंची उसने कान तक तान कर बाण छोड़ दिया। विष बुझे तीर का फल जाकर जिगारो की गर्दन में ऐसे घुसा जैसे गरम चाकू मक्खन में घुस जाता है। जिगारो जोर से चीख मार कर नीचे गिर पड़ा और तड़पने लगा। शेख आधी बेहोशी की अवस्था में था। वो चौंक कर उठ बैठा, लेकिन जब तक वो कुछ समझ पाता राज अपने बड़े चाकू सहित उसके सिर पर मौत का परकाला बनकर पहुंच चुका था। इसके पहले कि शेख अपनी गन उठा पाता राज ने पूरी तेजी से उछल कर उस पर चाकू का वार कर दिया। राज का चाकू शेख की गर्दन से होता हुआ हृदय तक जा पहुंचा और उसने रक्त का एक फव्वारा उड़ा दिया। शेख की आंखें उलट गईं, उसके प्राण पखेरू उड़ गए, नीचे जिगारो ने भी दम तोड़ दिया। राज ने शेख की शॉर्ट गन कंधे पर टांग ली और खींचकर शेख की लाश को घोड़े से गिरा दिया और घोड़े को हल्के हल्के सहलाने लगा। जैसे ही घोड़ा थोड़ा सहज हुआ राज उचक कर घोड़े पर बैठ गया। घोड़े ने कोई नानुकुर नहीं की तो उसने रिया को भी बुला लिया और घोड़े पर अपने पीछे बिठा लिया। दोनों बुरी तरह थक चुके थे। ऐसे में घोड़े की सवारी उन्हें स्वर्गलोक के पुष्पक विमान जैसी लग रही थी। राज ने घोड़े को फिर तट की ओर मोड़ दिया और घोड़े को एड़ लगाई। घोड़ा दुल की चाल से चलने लगा। राज और रिया का दुबला पतला बदन मिलाकर भी भारी भरकम शेख और जिगारों के वजन से कम ही था, तो घोड़े को भी राहत महसूस हुई। अब राज के पास शानदार हथियार और घोड़ा था, तो उसका उत्साह बढ़ गया था। शेख और जिगारों को उन्होंने खत्म कर दिया था, अब यमोशी और मिखाइल रह गए थे। गिलबर्ट मथाई के हाथों मरकर पैराडाइज जा पहुंचा था और शेख को राज ने जहन्नुम रसीद कर दिया था। काफी दूरी तक राज और रिया घोड़े पर सवार चलते गए। अचानक एक जगह घोड़ा भयभीत होकर अपने पिछले पैरों पर हिनहिनाता हुआ खड़ा सा हो गया। दोनों पीछे को लुढ़क गए। घोड़ा तेजी से एक दिशा को भाग खड़ा हुआ। ये वो जगह थी जहां लकड़बग्घों ने नंदू और तारा को मार डाला था। राज और रिया ने भय से थरथराते हुए नंदू और तारा की अधखाई लाशों को देखा। रिया तो उल्टी करने लगी। शायद अभी लकड़बग्घे अपना भोजन कर ही रहे थे कि घोड़े के आने की आहट पाकर अपने भीरू स्वभाव के कारण तितर बितर हो गए। राज और रिया को दूर अंधेरे में अनेक चमकती आंखें दिखाई पड़ने लगी। अब ढिलाई बरतने का समय नहीं था। राज ने अपनी शॉर्ट गन तान ली और रिया भी सावधान हो गई। वे उसी अवस्था में घटना स्थल से दूर भागने लगे। लकड़बग्घों के पास अभी नंदू और तारा के रूप में पर्याप्त भोजन मौजूद था, तो उन्होंने इन दोनों के पीछे जाने की कोई कोशिश नहीं की। वे इन दोनों के भागते ही फिर नंदू और तारा की अधखाई लाशों के पास आकर उन पर टूट पड़े। राज और रिया अब थोड़े ताजा दम हो चुके थे। वे बचते बचाते आगे बढ़ते रहे। पता नहीं दोनों शिकारी कहाँ होंगे। अगर वे कहीं घात लगाए बैठे हुए तो, रिया ने पूछा। हो सकता है, पर क्या कर सकते हैं, राज फुसफुसाता हुआ बोला। क्यों ना हम कहीं कुछ ऐसा करें कि वे दोनों हमें ढूंढते हुए यहीं आ पहुंचे। राज बोला, बात तो ठीक है। उन्हें ये नहीं पता कि हमारे पास गन है। वे तो हमारे पास सिर्फ छोटा चाकू होने की उम्मीद कर रहे होंगे। हम यहां शोर शराबा करके छुप जाते हैं। अचानक रिया ने जोरदार चीख मारी, जैसे कि उसे किसी हिंसक पशु ने दबोच लिया हो, और उसकी तेज चीख उस जंगल के नीरव स्तब्ध वातावरण में सायरन की तरह गूंजने लगी। उसके बाद रिया चटपट एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़कर पत्तों के बीच छुप गई। राज ने वृक्ष पर चढ़ने की कोशिश की तो असफल रहा। वो कभी पेड़ पर चढ़ा ही नहीं था। हार कर वो नीचे ही झाड़ियों में छुप गया। जल्दी ही उन लोगों को किसी के आने की आहट सुनाई पड़ी। उन्होंने देखा तो यमोशी और मिखाइल आ पहुंचे थे। वे दोनों अत्यंत सावधानी पूर्वक इधर उधर देखते हुए वहां आ रहे थे। जब वे दोनों रिया की रेंज में पहुंचे, तब रिया ने पेड़ पर बैठे बैठे ही धनुष तान कर एक तीर मिखाइल पर छोड़ा, लेकिन दुर्भाग्यवश बाण छोड़ते समय रिया का संतुलन गड़बड़ा गया और तीर अपने निशाने से चूक गया। सनसनाता हुआ तीर मिखाइल की बगल से होता हुआ झाड़ियों में जा गिरा। अचानक हुए इस हमले से मिखाइल हड़बड़ा गया, लेकिन वो पुराना खिलाड़ी था। उसने अपने आप को जमीन पर गिरा दिया और पेड़ की दिशा में गोलीबारी करने लगा। यमोशी भी पोजीशन लेकर पेड़ की दिशा में गोली दागने लगा। सौभाग्य से रिया पेड़ की एक मोटी डाल के पीछे छुपी हुई थी, इसीलिए गोलियां उसका कुछ बिगाड़ ना पाई। ये दोनों पेड़ की तरफ गोलीबारी करने में व्यस्त थे, तो इन्हें इस बात की खबर ही नहीं थी कि इनके पीछे राज शॉटगन लेकर बैठा हुआ था। राज ने बड़े आराम से दोनों पर कई गोलियां मार दी। अगले ही पल मिखाइल और यमोशी की आत्मा अपने बनाने वाले के हुजूर में खड़ी अपने पापों का हिसाब दे रही थी। शिकारी खुद शिकार हो गए थे। दो मिनट के बाद राज उस पेड़ के नीचे आ पहुंचा जहां रिया डरती सहमती नीचे उतर रही थी। वे दोनों मिलकर जोर जोर से रोने लगे। उनके आंसू परनाले की तरह बह रहे थे, लेकिन ये मुक्ति के आंसू थे। सुबह का उजाला फैलने लगा था। ये दोनों समुद्री तट पर पहुंच गए। वहां एक छोटी सी नाव उल्टी पड़ी हुई थी। राज और रिया उसी में बैठकर समुद्र में चल पड़े। चप्पू चला चला कर जब दोनों बेहाल हो गए, तो उन्होंने अपने आप को ईश्वर और समुद्र के हवाले छोड़ दिया। दो दिन बाद उन्हें मरणासन अवस्था में हिंदुस्तानी समुद्री तट रक्षकों द्वारा बचा लिया गया, और हफ्तों के इलाज के बाद उनकी जान बची। अपनी लोमहर्षक कहानी के कारण दोनों मीडिया में छा गए। बाद में राज ने इसी घटना पर एक कहानी लिखी जिस पर फिल्म बनी और सुपरहिट हो गई। कहने की जरूरत नहीं कि राज और रिया ही उस फिल्म के मुख्य किरदार थे। बाद में दोनों ने शादी कर ली और उनका जीवन सुखमय हो गया। लेकिन अपने चार बेगुनाह साथियों की मौत का अफसोस आजीवन उनके हृदय में कसकता रहा। आप सुन रहे थे कहानी खूनी खेल और इसके लेखक हैं महेश दुबे। गाथा के जरिए आप तक इसे पहुंचाया नैनी दीक्षित ने।